ये आकाशवाणी दिल्ली है। भाजपा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र पर सुझाव एकत्र करने के लिए संकल्प पत्र वैन को रवाना किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए 26 किलोमीटर से अधिक लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के पहले तकनीकी सत्र को संबोधित किया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला शहर के मंडी हाउस स्थित रविन्द्र भवन परिसर में जारी और दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के समृद्ध इतिहास और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए हेरिटेज वॉक कार्यक्रम शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में आज दिल्ली प्रदेश भाजपा ने पार्टी के घोषणा पत्र के लिए शहर के अलग अलग इलाकों से लोगों के सुझावों को संग्रहित करने के लिए आज संकल्प पत्र वैन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी।
जनता की एक ही आवाज है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए उससे बहुत परेशान है और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पे चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पे ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शहर में खराब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। आज मीडिया से बातचीत में आतिशी ने कहा कि शहरवासी अपने घरों से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत 26 किलोमीटर से अधिक लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर पर रिठाला रोहिणी सेक्टर 25, बरवाला रोहिणी सेक्टर 35, बवाना, जेजे कॉलोनी, सनौत, डिपो स्टेशन, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुंडली और नाथूपुर सहित कुल 21 स्टेशनों का निर्माण होगा। 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर को 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली मेट्रो का हरियाणा में ये चौथा विस्तार होगा। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पूरे देश में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो की फेज 4 के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर के निर्माण के लिए कैबिनेट की स्वीकृति से दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना का काम अगले 4 सालों में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी प्रेरणा देती है और उनका बलिदान सभी को विनम्र बनाता है। उन्होंने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का भी आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता, धैर्य और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और योगदान को स्मरण करने का दिन है।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है। हम उनकी शिक्षा, चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेना की सराहना की और सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वेच्छा से योगदान देने का आग्रह किया। 7 दिसंबर 1949 से देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दुनिया की भू राजनीतिक व्यवस्था वैश्विक दक्षिण की ओर बढ़ रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसके विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। श्री सिंधिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के पहले तकनीकी सत्र के दौरान विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर के विकास को गति देना विषय पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषता को निखारने और पर्यटन से लेकर कृषि बागवानी के उत्पादों तक इन्हें दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए देश और विदेश में कई रोड शो आयोजित किए जाएंगे।
हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक क्षमता को विश्व पटल पर उजागर करना है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिल्ली में आयोजित की गई है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि राज्य में पिछले 6 से 7 वर्षों में विकास लगभग 7% से बढ़कर 15% हो गया है। उन्होंने निजी निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना होगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री संगमा ने कहा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव सभी हितधारकों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूर्वोत्तर भारत की जीवंत टेपेस्ट्री और विविध संस्कृति को दर्शाते हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अपनी तरह के पहले इस महोत्सव में 250 से अधिक शिल्पकार 34 GI टैग वाली वस्तुओं सहित अनूठे हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि तथा बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार 3 दिन के इस महोत्सव के दौर फैशन शो, डिजाइन सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इससे अर्थपूर्ण सहभागिता का एक मंच मिलेगा जिसका लंबी अवधि में आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि और मुख्य कृषि अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य 2025-26 के केंद्रीय बजट पर विचार विमर्श करना था। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव के अलावा आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तथा DIPAM के सचिव भी मौजूद थे। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला शहर के मंडी हाउस स्थित रविन्द्र भवन परिसर में चल रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में अलग अलग प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
इस पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की चहल पहल काफी देखी जा रही है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में हिंदी, मैथिली, असमिया, डोगरी, बोडो, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध हैं। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, युवा साहित्य, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेले में आए एक आगंतुक सुशील गुप्ता ने बताया कि ये मेला पुस्तकों के प्रति लोगों के प्रेम को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
आकाशवाणी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और पाठकों से उनके अभिरुचि के हिसाब से उनका वक्तव्य, उनका मंतव्य लोगों तक पहुँचाने की जो अप्रतिम कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है।
मेघालय से आई एक अन्य आगंतुक मेहर ने कहा है कि भारतीय भाषाओं में रुचि रखने वाले लोगों को इस मेले में जरूर आना चाहिए।
आई एम मेसमराइज्ड विद द कलेक्शन हियर, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडियन लिटरेचर, दिस इज द राइट प्लेस टू बी हियर इन द एग्जीबिशन, द बुक फेयर।
प्रिया मंडल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र की जिलाधीश नेहा सिंह ने उनके आगमन पर सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन व ग्लाइडर जैसे हवाई यंत्र उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा VIP मार्ग NIT कुरुक्षेत्र, श्री भद्रकाली शक्तिपीठ तथा उसके आसपास 100 मीटर के दायरे तक सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े करने, VIP मार्ग के 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, लाठी, डंडे, तलवार, घंडासी, आग्नेय शस्त्र व किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। शहर के समृद्ध इतिहास और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए दिल्ली नगर निगम ने हेरिटेज वॉक कार्यक्रम आज से शुरू किया है। निगम ने बताया है कि हेरिटेज वॉक हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत का एक आकर्षक अनुभव प्रदान करना है, साथ ही इसके वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। निगम के अनुसार वॉक के दौरान प्रतिभागी प्रतिष्ठित स्थलों की ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। उनके साथ विशेषज्ञ गाइड होंगे जो आकर्षक तथ्य, कहानियां और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। इस वॉक में लोग बिना किसी पूर्व पंजीकरण के भाग ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर 2 किलोग्राम से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली चरस जब्त की गई है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्र से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली में बेचता था। दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पिछले 15 दिनों में करीब 55 किलोग्राम गांजा, 7,800 क्वार्टर अवैध शराब, 2 किलोग्राम से अधिक चरस और 11 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस की द्वारका जिले की टीम ने पिछले महीने देश में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि ये सभी नागरिक अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इन सभी नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा। ये कार्यक्रम 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रत्येक जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अभियान में 700 से अधिक जिला अधिकारी भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। ये तीसरी बार है जब सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 को पार कर गया। शादीपुर इलाके में 322, नेहरू नगर में 285, रोहिणी में 268, वजीरपुर में 256, आरकेपुरम में 255, सोनिया विहार में 252 और विवेक विहार में 251 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र पर सुझाव एकत्र करने के लिए संकल्प पत्र वैन को रवाना किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए 26 किलोमीटर से अधिक लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के पहले तकनीकी सत्र को संबोधित किया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला शहर के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में जारी और दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के समृद्ध इतिहास और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए हेरिटेज वॉक कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।